اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے قلندر شعور اور صفحہ نمبر ہے 149. ٹھیک ہے جی. گزشتہ نشست میں آپ نے دیکھا کہ حضور مرشد کریم نے کس طرح سے یہ سارا کرنوں کا، روشنیوں کا، ہلکے بننے کا یہ پورا نظام واضح کر دیا، یعنی بتا دیا کہ یہ سارا نظام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس نظام کو اب مزید اس کی وضاحت دیکھیں کہ بتایا گیا کہ روشنیاں جو ہیں یہ ستاروں سے نکلتی ہیں اور حلقے بناتی ہیں، اور وہ حلقے جو ہیں ایک طرف سیارے بن رہے ہیں، پھر ان سیاروں کے اندر کتنی چیزیں بن رہی ہیں، یہ سارا روشنیوں کے حلقوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس حلقہ بندی کو سمجھ لیں تو آپ کو بہت کچھ واضح ہو جائے گا. اب اس حلقہ بندی کے بعد اگلا نقطہ جو ہے وہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں، برقی را کیمرہ. یعنی ہمارے اندر ایک ایسا کیمرہ نصب ہے جو برقی را سے چلتا ہے، اور اس برقی را کو یعنی اطلاعات کے بہاؤ کو کیپچر کرتا رہتا ہے، اس کی تصویر کشی کرتا رہتا ہے. اس کو ہمارے اطلاعاتی نظام، اس کو ہم اپنا اطلاعاتی نظام کہیں گے، یعنی کہ ایک ریسیونگ اپریٹس لگا ہوا ہے ہمارے اندر. حضور فرما رہے ہیں کہ دماغ میں کھربوں خانے ہوتے ہیں. ایک دماغ میں، دماغ یعنی مادی جو برین ہے، اس میں کھربوں خانے ہوتے ہیں، اربوں نہیں کھربوں. ایک کھرب میں ایک ارب ہوتا ہے، اور ایک ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں. ایک کھرب میں سو ارب، اور پھر ایک ارب میں 100 کروڑ. باقی اندازہ کر لیجئے تعداد کتنی ہے. تو دماغ میں کھربوں خانے ہوتے ہیں، 2 کھرب سیلز صرف دماغ کے کام کرتے ہیں. اور ان خانوں میں یعنی ان خلیوں میں برقی را گزرتی رہتی ہے، یعنی ایک الیکٹرک کرنٹ ہے جو پاس آن ہوتا رہتا ہے. اسی برقی را کے ذریعے خیالات شعور، لاشعور اور تحت شعور سے گزرتے رہتے ہیں. یہاں پہ یہ 3 چیزیں ہیں، شعور، تحت شعور یعنی جو شعور کے نیچے ہے، شعور، پھر لاشعور، پھر لاشعور کے بعد تحت شعور یعنی جو شعور سے بھی نیچے ہے. تو یہ کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ کا مادی نظام شعور کہلا رہا ہے، لاشعور سے مراد آپ کا ذہنی نظام ہے، اور تحت شعور سے مراد ہے یہاں پہ ہونا چاہیے تحت لاشعور، یعنی جو لاشعور سے بھی نیچے ہے وہ جگہ، اس کو پھر روحانی نظام کہیں گے. تو یہ برقی را جو ہے یہ خیالات وہاں سے لا بھی رہی ہے ہمارے ذہن تک، اور پھر وہاں سے نیچے لاشعور تک، بلکہ تحت لاشعور تک لے کے بھی جا رہی ہے. تو دماغ کا ایک خانہ وہ ہے. اب یہ اس کی قسمیں بتانے لگے ہیں، اتفاق نہیں ہے، یہ قسمیں بھی 6 ہیں. ایک خانہ وہ ہے جس میں برقی را فوٹو لیتی رہتی ہے، یعنی کہ یہ برقی را گزرتی ہے تو وہ اس تصویر کو کیپچر کر لیتی ہے اور تقسیم کرتی ہے. جو تصویر وہ دیکھتی ہے اس کو، اس سے ریلیٹڈ اطلاعات کو پورے دماغ میں پھیلا دیتی ہے. اور یہ فوٹو بہت ہی زیادہ تاریک ہوتا ہے یا بہت ہی چمکدار. اب یہ جو تصویر وہ لیتی ہے اس کی 4 درجے ہوتے ہیں، یا وہ بہت تاریک ہوتا ہے، یا کم تاریک ہوتا ہے، یا روشن ہوتا ہے، یا بہت چمکدار ہوتا ہے. تو یہ 4 درجے جو ہیں یہ اصل میں واہما، خیال، تصور اور احساس ہے. ایک دوسرا خانہ ہے، जिसमें कुछ अहम बातें होती हैं लेकिन वो इतनी अहम नहीं होती कि साल हर साल गुजरने के बाद भी याद आ जाए। यानी कुछ बातें, ये दूसरा खाना जो है इसमें ज़रूरी बातें तो होती हैं लेकिन इतनी भी अहम नहीं कि सालों याद रहे। एक तीसरा खाना इससे ज़्यादा अहम बातों को जज्ब कर लेता है, जिन बातों को हम अहमियत देते हैं वो तीसरा खाना जज्ब करता है और वो बशर्ते मौका कभी कभी याद आ जाती हैं। एक चौथा खाना मामूलात का है, मामूलात मैंने रूटीन्स का, ये चार खाने हो गए। चौथा खाना मामूलात का है जिसके जरिए आदमी अमल करता है लेकिन उसमें इरादा शामिल नहीं होता। यानी कि ये मामूलात रूटीन के होते हैं और इसमें आपका इरादी अमल दखल नहीं होता। ये आपका चार खानों की तफसील आ गई। पांचवा खाना वो है जिसमें गुजरी हुई बातें अचानक याद आ जाती हैं। यानी कि उस खाने में, पांचवें खाने में ऐसी बातों की स्टोरेज होती है जो शऊर की जद में तो नहीं होती लेकिन जहां कहीं जरूरत पड़ती है या वैसे ही बैठे हुए अचानक ही वो फ्लैश करता है और एक पुरानी बात जहन में ताजा हो जाती है, अचानक मतलब कि याद आ जाती हैं। लेकिन जिनका जिंदगी के तारों पो से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि ताने बाने से कोई बज़ाहिर ताल्लुक नजर नहीं आता। अब एक छठा खाना ऐसा होता है जिसकी या तो कोई बात याद नहीं आती, यानी छठा खाना जो है वो ऐसा है कि अव्वल तो उसकी कोई बात याद नहीं आती और अगर याद आती है तो उसके साथ ही अमल हो जाता है। ये नुक्ता समझने का है, गोया छह दर्जे बता दिए ये छह, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि किसी परिंदे का ख्याल आया और ख्याल आते ही अमलन वो परिंदा सामने आ गया। मसलन आप कमरे में बैठे हैं, अचानक आपको कोयल का ख्याल आया, ठीक है, आप बाहर निकले तो सामने कोयल बैठी दिख गई। ये मिसालें हैं कि ये किसी भी चीज का ख्याल आया और फिर वो चीज मजहर बन गई, तो ये कमाल जो है छठे खाने का है। अब सातवां खाना वो है जिसको आम इस्तलाह में हाफजा कहते हैं। ये देखें वो छह खाने और ये सातवां जो है ये, अब देखा जाए तो छह के छह खाने हाफजे से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इनको मजमूई तौर पे हाफजा ही कहेंगे। तो सातवां खाना वो है यानी जहां मजहर बनती हैं चीजें और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वहां पे वो चीज महफूज हो जाती है, इसको हाफजा कहते हैं। अब ये देखिए कि आपके जहन की एनाटॉमी या उसकी बनावट, उसकी साख्त और उसकी माहियत के बारे में ये कैसा डिफरेंट तबसरा है, क्योंकि आपकी जो मेडिकल साइंस है वो इस चीज को नहीं समझी ना समझ सकी। ये उससे बिल्कुल हटकर ये रोशनियों की बुनियाद पे जो इसकी तकसीम अल्लाह ने बताई है सत्तत अय्याम कह के, ये उसकी असल वजाहत है। हजूर फरमाते हैं कि दिमाग में मखलूत आसमानी रंग आने से और पैवस्त होने से, मखलूत यानी मिक्सचर ऑफ ब्लू कलर, उसके मुख्तलिफ शेड्स, उन सारों को खल्त मल्त होने की वजह से मखलूत कहा गया। दिमाग में मखलूत आसमानी रंग आने और पैवस्त होने से ख्यालात, कैफियात और महसूसात वगैरह बदलते रहते हैं। ये जो हमारे ख्यालात की तब्दीली है, कैफियात की तब्दीली है और महसूसात, ये मुसलसल ये नीले रंग की जो शुआएं हमारे जहन में दाखिल होती रहती हैं, अगर वो यकसां हो, एक जैसी हो, तो ये ख्यालात, महसूसात और कैफियात भी यकसां रहेंगे लेकिन चूंकि वो मखलूत होती हैं, उस मखलत मल्ट की वजह से ये कैफियात, एहसासात और ख्यालात जो हैं ये भी बदलते रहते हैं। फिर ये होता है कि रफ्ता रफ्ता अब बचपन में इंसान को ख्याल आते हैं लेकिन वो उनको कोरिलेट नहीं कर पाता, फिर रफ्ता रफ्ता जो जो वो ग्रो करता है तो इंसान इन ख्यालात को मिलाना सीख लेता है। जब हम किसी से कोई बात सुनते हैं तो हमें पता होता है कि ये बात क्यों कही जा रही है, इसके नताइज क्या होंगे, तो ये इसको मिलाना कहते हैं। उनमें से जिन ख्यालात को वो बिल्कुल काट देता है यानी एक्सेप्ट नहीं करता, वो हजफ हो जाते हैं। जो ख्यालात अब देखे ना, माँ बाप ने आपसे कहा, बचपन से कह रहे हैं भी खाना चबा के खाओ, लेकिन हमारे इनर सेल्फ ने इस बात को सुना माना लेकिन अमल करने के वक्त भूल गए, यानी वो असल में हजफ हो चुके हैं। अब इन ख्यालात, उन में से जिन ख्यालात को वो बिल्कुल काट देता है वो हजफ हो जाते हैं, और जो जज्ब कर लेता है वो अमल बन जाते हैं। यहां से हमारे आमाल का सांचा बनता है कि हम जो ख्यालात एक्सेप्ट करते चले जाते हैं वो हमारे अमल बनते जाते हैं, और जिन ख्यालात को हम काट देते हैं या कैंसिल कर देते हैं वो हजफ हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, और जो जज्ब हो जाते हैं वो अमल बन जाते हैं। अब इन रंगों के साए, हल्के भारी यानी तरह तरह के अपना असर कमोबेश पैदा करते हैं और फौरन अपनी जगह छोड़ देते हैं ताकि दूसरे साए उनकी जगह ले सके। यहाँ पे मैंने इसीलिए वहाँ पीछे जब लफ्ज़ साए का आया था तो अर्ज किया था कि यहाँ पे मुराद शेड्स है, वरना तो हम कहते हैं कि हम पे साया हो गया है, वो साया वाला ये साए नहीं है बल्कि ये शेड्स मुराद हैं। तो क्या होता है कि ये रंगों के जो शेड्स होते हैं वो हल्के होते हैं या भारी होते हैं, यानी तरह तरह के, तो अपना वो असर भी अपनी हल्केपन या भारीपन की तरह पैदा करते हैं, जो असर भारी होता है या कमोबेश होता है या हल्का होता है, ठीक है। और साथ ही वो असर पैदा करके देखें तो गौर करें कि वो जगह छोड़ देते हैं, यानी कि वो असर देर पा नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, ठीक है, ताकि दूसरे साए उनकी जगह ले सकें। बहुत से साए जिन्होंने जगह छोड़ दी वो महसूसात बन जाते हैं, यानी कि जो जहन के उस नुक्ते से शेड्स जगह छोड़ते हैं वो हमारे एहसासात में यानी महसूस करने वाले आज़ा में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो महसूसात बन लेते हैं, इसलिए कि वो गहरे होते हैं, यानी जो साए गहरे होते हैं वो हमारा एहसास बन जाते हैं। अब गौर करें कि किस दर्जा बारीक बीनी से और गहराई से कितने आसान अल्फाज में सारी बात समझा दी। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पे गौर करें, इसको जहन नशीन कर लें, इस पे तफक्कुर करें, इस पे तदब्बर करें, इस पे गौर व फिक्र करते रहें। ये बात चूंकि हमारे आम बने हुए सांचे से डिफरेंट है इसलिए इसको हम दुश्वार कहते हैं या नामानूस होने की वजह से समझ नहीं पा रहे। जब आप इसकी तकरार करेंगे तो रफ्ता रफ्ता जहन इससे मानूस होता चला जाएगा और ये बातें आपकी फहम में इदराक बनती चली जाएंगी। अगला टॉपिक है आसाबी निजाम। अब देखिए ये सायों का, रोशनियों का ये सारा तस्करा, उससे पहले सांस का जिक्र, ये सारी बातें मंतकी अंजाम की तरफ ले जाते हुए हजूर मुर्शिद करीम बता रहे हैं कि सारी चीजों का आसाबी निजाम से क्या ताल्लुक है। फरमा रहे हैं कि हमारी तमाम अंदरूनी और बैरूनी हरकत को आसाबी निजाम कंट्रोल करता है। अंदरूनी हरकत क्या है, जैसे मैदे का चलना, आंतों का फेल, जिगर का फेल, गुर्दों का फेल, ये सारे अफाल क्या हैं, ये अंदरूनी हरकत हैं। और बैरूनी हरकत ये है कि मैं आंखें पटपटा रहा हूँ, मैं मेरा होंठ हिल रहे हैं तो बात हो रही है, तो मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे चेहरे के तासरात बन रहे हैं, उजलात खिंच रहे हैं तो आप कहते हैं मुस्कुरा रहा है, उजलात दूसरी तरह खिंच रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये खफा है, ये उदास है, ये गुस्से में है, ये सारी बैरूनी हरकत है। तो ये हमारी जितनी अंदरूनी और बैरूनी हरकत जो हैं, ये आसाबी निज़ाम कंट्रोल करता है। और न सिर्फ कैसे कंट्रोल करता है कि इनमें आपस में रब्त और हम आहंगी पैदा करता है। आप गौर करें कि आपने लीमू देखा तो लीमू को सोचने से, लीमू को देखने से जब वो उसका असर गहरा होता है, उसके रंगों का शेड आपके जहन में गहराई में उतरता है, तो आपके मुंह में लुआब पैदा हो जाता है। उसके बाद जब आप उसको लुआब को मुंह में मैदे में ले जाते हैं तो वहां पे वो दीगर केमिकल आमाल और मैदे की हरकत शुरू हो जाती हैं। ये सारा निज़ाम आसाबी निज़ाम कंट्रोल कर रहा है। अब आसाबी निज़ाम क्या है? ये आसाबी निज़ाम में दिमाग और हराम मगज के अलावा, यानी मेन चीज क्या है, आपका दिमाग, जिसको आप ग्रे मैटर भी कहते हैं, ये पूरा ग्रे मैटर नहीं है। इस ग्रे मैटर में वाइट मैटर भी है, जिसको फिर ये आगे चल के ये हराम मगज कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी से गुजरता हुआ और फिर वो आसाबी निज़ाम को बनाता है। तो दिमाग और हराम मगज के अलावा हमारे जिस्म में आसाब का एक जाल बिछा हुआ है। अंग्रेजी में आसाब को नर्व्स कहते हैं। मसल्स और चीज है, उसे उजलात कहते हैं। और आसाब जो हैं वो नर्व्स को कहते हैं। तो आसाब का एक जाल बिछा हुआ है। आसाब का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि उन्हीं के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ पैगामात दिमाग और हराम मगज तक पहुंचते हैं। यानी आसाब का असल रोल क्या है कि ये बॉडी की इंफॉर्मेशन को हराम मगज तक और फिर वो हराम मगज से आगे दिमाग तक पहुंचाया जाता है या वो पहुंचते हैं। और हम ये जान लेते हैं, यानी देखे इतने वसी और अरीज निज़ाम का हासिल क्या है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये हमें तब पता चलता है जब पूरा आसाबी निज़ाम अच्छी तरह काम कर रहा है। क्या सुन रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, ये जो है कि क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसके पीछे पूरा आपका आसाबी निज़ाम काम करता है। और अगर ये आसाबी निज़ाम ताकतवर ना हो, मजबूत ना हो, तो ये अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेगा? तो जाहिर है कि नहीं। तो इसीलिए हमारे देखने, हमारे सुनने, हमारे महसूस करने में कमजोरियां पाई जाती हैं। मजीद इसकी शरह फरमा रहे हैं कि हजरत मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं कि आसाबी निज़ाम का मरकजी किरदार दिमाग है, जो खोपड़ी के अंदर बंद है। इसके तीन हिस्से हैं। ये दिमाग जो है, अब इसकी तरह शरह आपको बताई जा रही है कि दिमाग के बेसिकली तीन अपार्टमेंट्स हैं या तीन कंपार्टमेंट्स हैं या तीन पार्ट्स हैं, तीन हिस्से हैं। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर गहरे मरकजी शिगाफ से दो निसफ कुरों में तकसीम है, ये दिमाग का बड़ा हिस्सा है। इसके बीचों बीच एक मरकजी शिगाफ है और उसकी वजह से ये दो निसफ कुरों में, यानी के हेमिस्फीयर्स में तकसीम है। इन कुर्रों को हम दायां दिमाग और बायां दिमाग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। ये दिमाग के दाएं और बाएं कुर्रे, यानी अगर आप देखें ना कान के करीब का ये ऊपर फूला हुआ उभार जो है, ये दिमाग का दायां या बायां उभार जो है वो असल में इसी को दायां और बायां दिमाग कहते हैं। ये दिमाग के दो मेन हिस्से हो गए, ठीक है। दिमाग के दायां दिमाग जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। ये पॉइंट भी नोट करने का है कि बजाहिर दायां दिमाग जो है, दाईं तरफ का दिमाग ही हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और बायां दिमाग जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। अब दिमाग की ऊपरी सतह हल्के सुरमई रंग के मादे की तय होती है। दिमाग के ऊपरी सतह पर उसकी एक झिल्ली सी होती है, उस झिल्ली में हल्का सुरमई रंग का मादा होता है। हल्के सुरमई रंग का मादा जो है वो उसको, अब मैंने जब ये पूछा था हजूर मुर्शिदे करीम से, तो हजूर मुर्शिदे करीम ने एक बड़ी खूबसूरत या एक अजीब सी बात बताई। कहने लगे, उन्होंने फरमाया कि ये जो हल्का सुरमई रंग का मादा है यही तो दुखान है, और ये आम जानवरों में ये सतह नहीं होती। इसीलिए हमारे साइंसदान या जो फिजिशियंस हैं या जो एनाटोमिस्ट हैं वो इसको ग्रे मैटर कहते हैं, और इसके नीचे एक सफेद रंग का दबीज हिस्सा होता है, और ये सफेद दिमाग जो है ये सोच विचार तफक्कुर गौर व फिक्र को कंट्रोल करता है। हल्के सुरमई रंग का दिमाग वो जगह है जहां पर तमाम जिस्म से पैगामात आते हैं, यानी ये जो ग्रे मैटर है यही हमारी सोच विचार का असल महवर है। बाकी ये जो वाइट मैटर है ये हमारी हैवानी हरकात व सकनात का बाइस बनता है, या ये इसको कंट्रोल करता है। तो हल्के सुरमई रंग का दिमाग वो जगह है जहां पर तमाम जिस्म से पैगामात आते हैं, और यहीं से मुख्तलिफ पैगामात जिस्म को वापस भेजे जाते हैं। ये जिस्म के उजलात को कंट्रोल करता है। उजलात मैंने रेशे यानी टिश्यूज यानी मसल्स। इसके अलावा आंख कान नाक की हिस्सों के मराकज भी इसी दिमाग में होते हैं, यानी आंख नाक कान ये इनके अलहदा अलहदा मराकज हैं। अब दिमाग का पिछला हिस्सा जहां ये दोनों मिलते हैं वहां ये रीढ़ की हड्डी में हराम मगज और ये जो दिमाग है इसके दरमियान में एक हिस्सा है जिसका जिसको पिछला हिस्सा यानी मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं। ये असल में दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। ये योगी ये जो योगा करते हैं वो हब से दम की मशकों के जरिए ये जो सांस रोकने की मशकें हैं उनको बढ़ाकर इस दर्जे पे ले जाते हैं कि वो इसके जरिए के दिल की धड़कन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। योगी हब से दम की मशकों के जरिए इस बात पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं कि मेडुला ओब्लोंगेटा में ऑक्सीजन की कसीर मकदार जखीरा करके वो तवील अरसे तक बगैर सांस लिए जिंदा रह सके। वो कई कई साल तक मुर्दा रहकर दोबारा जी उठते हैं। ये देखिए, यानी कि ये सांस के जरिए ऑक्सीजन को स्टोर करना और फिर उस सांस को रोक के उस स्टोर्ड ऑक्सीजन के जरिए दिल की रफ्तार और हरकत को कंट्रोल करके, अब देखिए ना हमारा दिल आमतौर पे एक मिनट में 72 से 80 मरतबा धड़कता है। अगर इस रफ्तार को कंट्रोल करके वो एक या दो धड़कन पर मिनट कर दी जाए तो अंदाजा करें खून का बहाव चलता तो रहेगा और ऑक्सीजन कम से कम खर्च होती रहेगी, लेकिन वो जिंदगी की उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी अगर कि वो शऊर में नहीं होगा। हजूर फरमाते हैं कि हराम मगज आसाबी नसीजों का मजमुआ है। हराम मगज क्या चीज है? ये नर्वस टिश्यूज का मजमुआ है, नर्व टिश्यूज का, जो कि एक लंबी डोरी की शक्ल में, यानी हराम मगज जो है ये एक लंबी डोरी की शक्ल में रीढ़ की हड्डी के सुराख में वाक्या है। یہ دماغ اور جسم کے درمیان ربط قائم کرتا ہے اور جسم کے کو تمام پیغامات کی تقسیم حرام مغز کے ذریعے ہوتی ہے. دل کے دھڑکنے، پھیلنے اور سکڑنے کا عمل، یہ برقی رو پر قائم ہے، اور بجلی کی لہریں دل کو پھیلاتی اور سکڑتی رہتی ہیں. یہ جو دل کے دھڑکنے، پھیلنے اور سکڑنے کا عمل جو ہے، یہ برقی رو پر قائم ہے، اور بجلی کی لہریں ہمارے دل کو پھیلاتی بھی ہیں اور سکڑتی بھی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کسی مشین کو چلانے کے لیے برقی رو کام کرتی ہے، یعنی جیسے آپ کی واشنگ مشین جو ہے، جب اس کو الیکٹرک کرنٹ ملتا ہے تو وہ کبھی کلاک وائز موو کرتی ہے، کبھی اینٹی کلاک وائز موو کرتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک میکانزم رکھا ہوا ہے جو کہ مشین کی موٹر کی حرکت کی جو سمت ہے اس کو بدلتی ہے. اسی طرح جب یہ الیکٹرک کرنٹ آپ کے دل کے نسیجوں میں، اس کی بافتوں میں اور اس کے ٹیشوز میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو وہ سکیڑتا اور پھیلاتا ہے. جب وہ سکیڑتا ہے تو وہ خون کو پمپ آؤٹ کرتا ہے، جب وہ پھیلتا ہے تو وہ خون کو سک ان کرتا ہے. دل کے دھڑکنے، پھیلنے اور سکڑنے کا عمل برقی رو کے اوپر قائم ہے. بجلی کی لہریں دل کو پھیلاتی اور سکیڑتی رہتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کسی مشین کو چلانے کے لیے برقی رو کام کرتی ہے، اس طرح ہمارا پورا جسمانی نظام اعصاب کے تانے بانے سے مرکب ہے، جس میں برقی رو یا الیکٹریسٹی دوڑتی رہتی ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارا جسمانی نظام برقی رو یا روشنی پر قائم ہے. دیکھ لیجئے، برقی رو کو روشنی کہا، اور میں کیا عرض کرتا ہوں کہ روشنی کو آپ انٹرپریٹ کر کے دیکھیں، یہ تصورات کو کہتے ہیں. تو یہ ہمارا سارا جسمانی نظام برقی رو، روشنی پر قائم ہے، اور یہ سارا نظام روشنی سے فیڈ ہوتا رہتا ہے. یہ سب آٹومیٹک ہے. اس میں آپ کا عمل اور ارادہ کیا مانی، جس بات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس میں اپنا عمل، اپنا ارادہ، اپنا اختیار کہاں استعمال کر سکتے. تو ان چیزوں کا شعور اس لیے دیا جا رہا ہے، کلندر شعور کا حامل بندہ ان سب باتوں سے اس لیے اسے سکھایا اور بتایا جاتا ہے، اور وہ خود اس کو جاننے میں منہمک رہتا ہے. کیونکہ وہ جانے گا تو اس مشین کو آپ جانتے ہی نہیں کہ اس کو کیسے چلانا ہے، تو آپ اس کو چلا کیسے لیں گے، یا اس کو کنٹرول کیسے کر لیں گے، یا اس کی رفتار کیسے بڑھا لیں گے، یا اس کی رفتار کو سلو ڈاؤن کیسے کر لیں گے. جیسے اب یوگی اپنے دل کی رفتاروں کو کم یا زیادہ کر لیتے ہیں، کیا میں اور آپ کر سکتے ہو؟ ایک یوگی کر سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی، وہ فزیکل لیول پہ صرف سانس کی مشقوں سے یہ کر رہا ہے. اور یہاں تو کلندر شعور جو ہے وہ جسمانی نظام سے لے کر ذہنی فکری نظام سے اوپر اٹھ کر آپ کو روحانی نظام سے آشنا کرنے، تو یہ سارا نظام اس لیے واضح کیا جا رہا ہے. آپ اس کو سرسری نہ پڑھیں، اس کو سرسری نہ سمجھیں، تو میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی آئندہ نشست میں مطالعہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی.